माफ कीजिएगा इंजीनियर साहब, शर्मिंदा हूँ अपने बच्चों की कसम। अगर कोई ओवर टाइम भी करता रहे फिर भी बीवी बच्चे उसकी कदर नहीं करेंगे। आते हैं, लीजिए आपकी खिदमत में।
हेलो, मैं ऑफिस की तरफ से ड्यूटी पर था।
और आपके 20-2 और 9 दिसंबर, 14 जनवरी और 16 फरवरी के सफर कैसे थे?
मैं अपने सफर की डेट जहन नशीन नहीं करता, मैं बैरून मुल्क बहुत ज्यादा जाता हूँ, ऑफिस में सब जानते हैं।
अगर आपका हाफिजा ज़ईफ़ है तो मुझे याद दिलाने दीजिए कि आपने इन तारीखों में ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी और कई ममालिक की जानिब सफर किया था। लेकिन ये बात आपने नहीं सोची कि बिरूने मुल्क आपका सफर ऑफिस की तरफ से नहीं था, कोई और भी उस पर शक कर सकता है। कैसी इंफॉर्मेशन आपने उस आदमी को दी थी?
कैसी इंफॉर्मेशन? कौन आदमी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं।
इसी सिलसिले में जिसके बारे में आप भी जानते हैं और हम भी।
लेकिन मैं
लेकिन छोड़िए,
मेरी गलती ये थी कि एक फैमिली बनकर रहना चाहते थे किसी भी कीमत पर।
एक फैमिली के साथ रहना तो ऐन सवाब है, गुनाह नहीं। अब आप बता सकते हैं कि इसकी कीमत किसकी जेब से अदा हो रही थी?
हमारी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सबको हमारी जिंदगी पर रश्क होता था। मेरी बीवी को अमेरिका का भूत सवार हो गया, उन्हें भी पता चल गया और मेरे पीछे लग गए।
कैसे उनसे रब्ता हुआ? तुम उनके पास गए थे, वो तुम्हारे पास आए थे?
वो मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते थे, इसलिए वो खुद मेरे पास आए।
उनको कैसे तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता था? तुम जरूर उन लोगों में से हो जो जिस जगह जाते हैं अपने दिल की बातें सबके सामने खोल के रख देते हैं।
मैं हमेशा किसी की तलाश में रहता हूं कि अपने दिल की बात उससे करूं। शायद उन्हीं में से किसी ने मेरे साथ ऐसा किया है।
तुमको खुद क्या लगता है?
स्टीवन कहता था कि मेरे ऑफिस में उसका एक आदमी है ताकि मुझ जैसे लोगों के बारे में मालूमात हासिल कर सके और हमारी मुश्किलों को उनके सामने पेश करे। सच या झूठ के बारे में मुझे तो नहीं मालूम, शायद इसलिए कह रहा था कि मुझे एहसास हो जाए कि हर जगह पर कंट्रोल किया जा रहा है मुझे।
स्टीफन के अलावा भी किसी और से भी मुलाकात हुई?
नहीं।
क्या क्या जानकारियां उन्हें दी?
ان کمپنیوں کے نام جو اپنے سامان اور پرزے ایران کو بیچتے ہیں، اور ان پرزوں کی لسٹ جو گزشتہ سال ہم نے خریداری کی ہے، ان افراد اور کمپنیوں کے نام جن سے ہمارا ایگریمنٹ ہے، ان علاقوں کا نام جہاں تحقیقاتی کام ہو رہے ہیں، پرزوں اور وسائل کی لسٹ کے جن کی سخت ضرورت ہے، لیکن ہم انہیں خرید نہیں سکتے۔
یہ سب انفارمیشن کیسے تمہیں انہیں دی؟
فلیش میموری دیا کرتا تھا اور اگلے سفر میں لے لیا کرتا تھا، تاکید تھی کہ بس یہی والا فلیش استعمال کرنا، خود کو اچھا دکھانے کے لیے بعض اہم کاغذات کی فوٹو بھی اپنے موبائل سے کھینچ کر اسے دی تھی۔
ایک بار پھر سسٹم کو چیک کیا، جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے لیکن ذہنی طور پر بیمار ہے۔
کیوں اس سے کوئی اہم انفارمیشن نہیں لیتے، یا کم سے کم کسی اہم سلسلے میں کوئی منصوبہ نہیں بنایا؟
شاید ابھی اسے آزما رہے ہیں۔
وہ 10 انفارمیشن لیتے ہیں تاکہ ایک سے استفادہ کر سکیں۔ ابھی بتانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ کیسی انفارمیشن ان کے لیے اہم ہے۔
ہمارے پاس اس وقت صرف دو راستے ہیں، جو کہ میری نظر میں پہلا راستہ زیادہ منطقی معلوم ہوتا ہے۔ اسے کورٹ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی سیکورٹی کے ذریعے اس بات کو آئل منسٹری تک پہنچائیں گے، تاکہ دی گئی انفارمیشن کے مطابق احتمالی نقصان کا اندازہ لگایا جا سکے۔
اور دوسرا راستہ؟
اگر اسٹریٹجک انفارمیشن لیک کر دی گئی ہو تو ہم مجبور ہیں کہ اسی کے ذریعے اسٹیون تک یہ بات بھی پہنچائیں کہ بہت سی باتیں اور انفارمیشن غلط ہیں۔
واقعی کیا فائدہ ہوا جو کہ اپنی بیوی کی خواہش کی خاطر اس وقت یہاں ہو؟
میں جانتا ہوں کہ انہیں اہم انفارمیشنز دی ہیں، لیکن اب آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟
تم خود کیا سوچتے ہو؟
میں کچھ نہیں سوچ رہا ہوں، جو کچھ سوچنا تھا پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا۔
اب ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھی بنو۔
ساتھی مطلب میں یہاں سے باہر جا سکتا ہوں؟
تم کو لگتا ہے کہ یہ جیل ہے؟
میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔
سمجھ جاؤ گے، لیکن ٹائم برباد کر رہے ہو تاکہ اس بارے میں مزید سوچو۔
لیکن آپ کیسے اس شخص پر بھروسہ کر سکتے ہیں جو تمام حدیں پار کر چکا ہے؟
جو تمام حدیں پار کر چکا ہے وہ خود کو بھی برباد کر سکتا ہے، نجات بھی دلا سکتا ہے، چونکہ اب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
آپ کو کیسے یقین ہے کہ ہم برباد نہیں کریں گے؟
برباد نہیں کرو گے، چونکہ ملسک دشمنی کی بنا پر وہاں نہیں گئے تھے، لہٰذا ایسا کام نہیں کرو گے۔ جو شخص اپنی فیملی کو چاہتا ہو وہ برا انسان نہیں بن سکتا۔ یہ تمہاری زندگی کو ثابت کرنے کا واحد راستہ ہے۔ جاؤ اسٹیون کے پاس اور اسے کہو کہ پچھلے دنوں تو ہم سے رابطے میں تھے۔
اس کا فائدہ کیا ہے؟
تاکہ اسے پتا چل جائے کہ جو انفارمیشن تمہیں دی ہے وہ سب پلاننگ کے تحت تھی۔
تاکہ وہ میری جان لے لیں؟ ایک بار میں نے کہا تھا کہ ساتھ نہیں دوں گا تو جان لینے کی دھمکی دی تھی۔
یہاں کیوں؟ کیسے اس بار اپنی سیکیورٹی پر توجہ نہیں دی آپ نے؟ میں اب آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں۔
ایسا بھی نہیں ہے کہ جب چاہیں آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں فوزلی صاحب۔
دیکھیے، میری زندگی میں کچھ ذاتی مشکلیں سامنے آ رہی ہیں۔
تو اپنی مشکلیں مت بڑھائیں۔
کیا مطلب؟
اس موضوع پر آپ کے تصور کے خلاف پیسے خرچ کیے ہیں۔
تو مجھ سے کیا مطلب؟
آپ سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے کام کے بارے میں علم نہیں ہے۔ آغاز تو آپ کے اختیار میں ہے، لیکن انجام کا فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ بس ایک صورت میں دوسرے شخص کا انتخاب کرتے ہیں۔
जब तुम हमारे साथी बन जाओगे तो तुम भी पुलिस होगे। उस सूरत में तुम्हारी जान की जिम्मेदारी हमारी होगी। परेशान ना हो।
जब मैं मर जाऊंगा तो इन बातों का क्या फायदा होगा?
तुम खुद मुझसे बेहतर जानते हो कि इस मुल्क में एक कतरा तेल की अहमियत कितनी है। तुम बेहतर जानते हो कि अगर किसी तेल के प्लेटफॉर्म से तेल निकाल नहीं सकते तो कितने हमारे नाम के पड़ोसी और साथी इस इंतजार में हैं कि हम उससे कोई चूक हो और वो तेल अपने कब्जे में कर लें।
अब मुझे क्या करना होगा?
जल्दी मत करो, हम सब बताएंगे तुमको।
ये बात तो सब कहते हैं कि मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। मैं समझ रहा था कि खुद उसका मुकाबला कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। सब ऐसी बातें करते हैं और आखिर में सब खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। खामोशी।
इस बार का काम काफ़ी मुश्किल था, चूँकि अहम इन्फॉर्मेशन से तुमने हमारे लिए फराहम की हैं। तुम लोग कहते हो ना, रंज के बगैर गंज नहीं मिलता,
हासिल नहीं होता। हाँ, लेकिन यहाँ पर उसका मिस्ताक नहीं।
वो कैसे?
चूँकि रंज तो मेरे हिस्से में और गंज आपके हिस्से में।
आप भी अपने गंज तक पहुँच जाएंगे।
आपको लगता है कि मेरा गंज अमरीका जाना है?
जी हाँ, वरना किसी और चीज की ख्वाहिश करते।
मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता था। मेरी बीवी को अमरीका पसंद है।
यहाँ हमारे यहाँ खावत है, ध्यान दिया करो किस चीज की आरजू कर रहे हो, क्योंकि मुमकिन है वो आरजू कभी पूरी हो जाए। एक बुरी खबर है, अब इसके बाद हम नहीं मिलेंगे जनाब फाजली साहब।
मैं भी अब थक चुका हूँ।
क्या मतलब?
मतलब मेरी पूरी जिंदगी ईरान में खिलौना बन चुकी है। तीन तरह के लोगों से मुझे खेलना पड़ता है, और यहाँ आपके साथ, और हर कोई मुझे टहलाता ही रहता है।
हमारे साथ क्यों खेलना पड़ता है? क्या मतलब?
वो इंफॉर्मेशन जो आपको दी है उसकी कीमत एक वीजे के बराबर थी। मेरा हिस्सा दीजिए।
लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने।
अहम नहीं है।
खेल से तुम्हारी क्या मुराद थी?
मैं हमेशा से बदकिस्मत रहा। यहां तुम्हारे सवालों का जवाब देना पड़ता है, ईरान की पुलिस को भी, और घर में अपने बीवी बच्चों को।
पुलिस का?
तुम ही जैसे कुछ लोगों का।
यानी ये झूठी इंफॉर्मेशन से?
सब तो नहीं, लेकिन अगर जानना चाहते हो कौन सी बातें झूठी हैं तो पहले मेरा वीजा दो, वरना सबसे पहले खत में सब कुछ लिखकर फिर इस शहर के बीच खुद को आग लगा दूंगा।
Thank you.
भेज रहा हूँ।
हाँ मैं देख रहा हूँ।
सारी फाइल्स चली गई। राहुल साहब, मैंने लैपटॉप की सारी इंफॉर्मेशन खाली करके आपको भेज दी हैं।
इंफॉर्मेशन मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त हो गई, शुक्रिया।
Good morning, Mr. Fazeli.
Hello.
You.
Who?
Someone give it to me and go.
Okay, thank
Please.
You. تم کو باقی ایرانیوں کی طرح ہوشیار رہنا چاہیے، ہر پیکٹ قبول نہیں کرنا چاہیے ڈیئر ہامی۔
ہیلو، السلام علیکم بیٹا۔
وعلیکم السلام،
کیسے ہو؟
شکریہ، آپ ٹھیک ہیں؟
امی اور نازنین ٹھیک ہیں؟
وہ سب ٹھیک ہیں، لیکن آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی۔
اچھا اچھا، میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہوں۔
بابا،
بیٹا،
میں جانا نہیں چاہتا بابا۔
بیٹا، شاید تمہیں اس وقت پسند نہ ہو، لیکن تمہاری امی نے سب کچھ سوچ رکھا ہے، پریشان نہ ہو۔
ارے بابا، یہ سب چھوڑیے، کیوں بار بار ممی ممی لگائے ہوئے ہیں؟ ممی اپنے من سے کہہ رہی ہیں۔ بابا،
کیا ہے بیٹا؟
بابا، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں کی ہر چیز پسند ہے، ہر چیز، یہاں کی پولیس بھی، ان کے برے مزاج بھی۔ میں اب اس سے زیادہ واضح طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔
اپنی امی کا مقابلہ کر پاؤ گے؟
جی ہاں، انہیں مجھ پر چھوڑ دیجیے۔
کھانا نہیں کھایا، جانتا ہوں رات کے جاگنے کی وجہ سے ہے۔ رات میں ٹیبلٹ لیتے ہو نا، اپنی بیوی کو بھی فون نہیں کرتے۔ جب سے یہاں آئے ہو گھومنے کی غرض سے بھی نہیں نکلے، سنیما بھی نہیں گئے، لیکن اور تین ملاقاتوں میں بھی صرف ایک میں ہی گئے ہو۔ میں جانتا ہوں کام کے لیے مختلف بہانے تراش رہو گے، لیکن یہ کھیل تم نے خود شروع کیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ ہمارا ادھورا ساتھ دے رہے ہو اور سٹیون کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہو، تو پھر بھی کچھ نہیں کہو گے؟
کیوں نہیں، کیوں نہیں، رات میں سکون سے سوتا ہوں، دن میں بھی میرا کوئی پیچھا نہیں کرتا، نہ کوئی مجھے پھانسی کے پھندے تک لے جاتا ہے اور نہ کوئی مجھے پھانسی دیتا ہے۔ جب بھی خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو اپنے آپ سے مجھے نفرت نہیں ہوتی، بالکل نہیں۔
لیکن گھر والوں کو بھی امریکہ میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے؟
کاش میں آپ پر بھروسہ کر سکتا۔
مجبور بھی نہیں ہو،
انسان کو جانے اور رہنے کے بھی چھوڑ دیتے ہیں، और पैरों तले से जमीन भी खींच लेते हैं।
तुम यकीन रखो, ईरानी जमीन पर गिरोगे तो चोट नहीं लगेगी।
ये हिमायत है या धमकी?
तहदीद है, लेकिन हमारी तरफ से नहीं।
कागज पर तो यही लिखा है।
तुम्हें अपने कब्जे में कर चुके हैं, तुम्हारे लिए प्लान बना रखा है।
इस तरह डराने का शुक्रिया।
हम अपना काम कर रहे हैं।
थक गया, आखिर कब तक? किसी और से कह दीजिए।
नामुमकिन है।
क्यों?
क्योंकि इस कहानी की शुरुआत तुम्हारे जरिए हुई है। यकीनन वो दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते।
मुझे किस हद तक आगे जाना होगा?
जहां तक वो कहते हैं।
आपको इस कहानी का अंजाम पता है?
नहीं, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है।
लेकिन अगर आज ही मैं गायब हो गया और मुझे आप लोग ढूंढ ना सके तो आपको बहुत अफसोस होगा कि आपका प्लान अंजाम तक नहीं पहुंचा।
यकीनन हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिसकी बुनियाद पर तुम्हारी जान खतरे में पड़े।
सुबह तक भी यूं ही बात करते रहेंगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन रह सकूंगा।
तुम पर रहम नहीं खाएंगे, ईरान तक पहुंचने नहीं देंगे। तुम अब उनके लिए एक बेकार ऑप्शन हो हामी, एक जली हुई माचिस। लेकिन याद रखो कि हम साए की तरह तुम्हारे साथ हैं।
खेल मुश्किल से मुश्किल होता जाता है, हमेशा उसी तरह होता है कि जिसका तसव्वुर भी तुम न कर सको। जब किसी चीज की ज्यादा जरूरत हो तो उसको हासिल करना भी मुश्किल हो जाता है। मुझे एक घर और घराने की जरूरत थी, बहुत ज्यादा। लेकिन घर मेरे लिए कब्रिस्तान बन गया था। तजारत में तो फायदा बहुत हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसे फायदे में इंसान मौत तलाश करता है।
Excuse me, sir. You had a call from Iran, but he didn't say who is. And he told me that he would call later. Somebody came here and asked me to pass this envelope to you. Please.
Thanks.
Okay.
क्या हुआ? मेरे पास और कोई चारा नहीं था, अब ईरान वापस नहीं जा सकते, या मुझे अमेरिका जाना होगा या वही करूंगा जो कहा था। देख ले,
मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो फजली?
छोड़ो मुझे,
मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तुम अकेले हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकता मिस्टर फाजली, कुछ भी नहीं।
तुम क्या कह रहे हो? कोई चारा नहीं था मेरे पास, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तुमने वादा किया था मुझे वीजा दोगे, दो हफ्ते के अंदर वीजा दोगे। सब बातें मुझे जो बताई थी सब झूठी, मुझे अकेला छोड़ दिया तुम लोगों ने, अकेला छोड़ दिया।
ये जो करना हो करो,
छोड़ो मुझे। किसी का इंतजार कर रहे हो? तुमसे पूछ रहा हूं, किसी का इंतजार कर रहे हो?
हाथ मत लगाओ मिस्टर फाजली।
मैरी क्रिसमस।
यू टू मैरी क्रिसमस।
स्टीव मक्लार, आपका सारा प्लान फेल हो गया। आपके लैपटॉप की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास एक दूसरे हार्ड में कॉपी हो चुकी है।
मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो।
जब तुम इस पेशे में एक्सपर्ट हुए थे तो अपने मुल्क के लिए एक चैंपियन थे, इन तक कुछ मालूमात पहुंचाना चाहते थे। इस वक्त भी चैंपियन रह सकते हो, इस शर्त के साथ कि तुम्हारा मुल्क तुम्हारे लैपटॉप की इंफॉर्मेशन के बारे में अनजान रहे।
आपको क्या चाहिए?
हमारे लिए काम करो।
अगर ना करूं तो?
इस सूरत में पहले तो सऊदी अरब के पैसों से हाथ धोना पड़ेगा और अपने मुल्क वापस जाते ही अपनी जिंदगी से। 24 घंटे के अंदर इस नंबर पर रابطہ करना, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा, तुम भी मुझे मायूस मत करना। हेलो, बहुत खूब, बहुत अच्छा काम किया। हेलो, सलाम अलैकुम। उसका मेरे पास फोन आया था, मिलना है। जी, लेकिन मेरी वापसी कुछ ताखीर से होगी। आपसे रابطے में रहूंगा। खुदा हाफिज।
खराब मौसम और अंधेरा, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे अपनी मौत के बाद याद हैं। कुछ और चीज़ें भी याद हैं जिन्हें भुलाना नहीं चाहता। उसके बाद सुकून मिलता है और वो एक सफ़र जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है।